भारत छ डॉक्टर डीडी कोसाम्बी कोसाम्बी डॉक्टर कोसाम्बी मूलतः गणित और अनुवंशिकी के विद्वान थे। काशी हिंदू विश्वविद्यालय काशी में गणित के प्राध्यापक होते हुए भी इतिहास, संस्कृति, पुरातत्व, नृतत्व, विज्ञान, मुद्रा शास्त्र, अभिलेख तथा ज्ञान के विभिन्न अनुशासनों एवं भाषाओं के ज्ञाता थे। काव्य एवं साहित्य के विभिन्न विधाओं में उनका प्रवेश प्रशंसनीय रहा है। एक वैज्ञानिक का इतिहास एवं संस्कृति में व्यक्तित्व का यह रूपांतरण अद्भुत एवं अद्वितीय रूप में माना जाता है। डॉक्टर कोसाम्बी ने अपने स्वास्थ्य, परिश्रम एवं वैज्ञानिक विश्लेषण पद्धति में इतिहास को नए संदर्भों और विज्ञान के भौतिक आधारों के माध्यम से समझा है। इतिहास दर्शन एवं इतिहास लेखन को उनका एक मौलिक एवं पृथक अवदान है। कृतियां एवं कार्य डॉक्टर कोसाम्बी द्वारा भर्तृहरि के काव्य एवं प्राचीन सुभाषित रत्नकोश का संपादन कार्य अपने में एक अप्रतिम कार्य है। उन्होंने माइक्रोलिथ तथा मेगालिथ का संग्रह और खोज करके प्रागैतिहासिक के क्षेत्र में एक विशिष्ट योगदान प्रदान किया। प्राचीन भारतीय इतिहास एवं संस्कृति से संबंधित लगभग शताधिक शोध पत्रों को लिखकर अनेकशः आयामों में भौतिक व्याख्या की है। डॉक्टर कोसाम्बी द्वारा ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक शोधों एवं अन्वेषणों को उनके द्वारा लिखित दो प्रसिद्ध पुस्तकों में देखा जा सकता है। क इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री, ख कल्चर एंड सिविलाइजेशन ऑफ एंशियंट इंडियन हिस्टोरिकल आउटलाइन। इन दोनों पुस्तकों में डॉक्टर कोसाम्बी ने भारतीय इतिहास के परंपरागत अध्ययन की दृष्टि का खंडन करते हुए भौतिकवादी दृष्टि का मंडन किया है। इसके अतिरिक्त उनकी अति प्रसिद्ध पुस्तक मिथ एंड रियलिटी इन इंडियन हिस्ट्री है, जो भारतीय इतिहास के मिथकों को पृथक करती हुई वस्तुगत इतिहास प्रस्तुत करती है। ऐतिहासिक दृष्टि। यद्यपि डॉक्टर कोसाम्बी ने अपने रचनाओं में मार्क्स, एंगेल्स और स्टालिन को उद्धृत किया है, परंतु स्टालिन से नितांत असहमत थे तथा मार्क्स और एंगेल्स के भौतिकवादी ऐतिहासिक व्याख्या को स्वीकारते हुए भी उन्होंने नई भौतिकवादी व्याख्या की है। टॉमस का कथन है कि भारतीय इतिहास की जटिल प्रक्रियाओं और परिप्रेक्ष्य में एक इतिहासकार के रूप में कोसाम्बी की व्याख्या मार्क्सवादी थी। डॉक्टर कोसाम्बी ने भारतीय इतिहास में दासता की भूमिका पर अपना दृष्टिकोण एस डांगे की पुस्तक भारत आदिम साम्यवाद से दासता तक पर अपनी आलोचनात्मक व्याख्या में भिन्न मत व्यक्त किया है। इतिहास के मार्क्सवादी व्याख्या में भी कोसाम्बी कभी भी मार्क्स और एंगेल्स के कठोर ढांचे में अन्य इतिहासकारों डांगे हुसैनी की भांति कभी अपने को कभी अपने को बांधे नहीं रखे। उन्होंने लिखा है कि इंडियन हिस्ट्री डज नॉट फिट प्रिसिसली इनटू दिस रिगिड फ्रेमवर्क, अर्थात भारतीय इतिहास इस मार्क्सवादी ढांचे में ठीक नहीं बैठती है। इतिहास एवं ऐतिहासिक व्याख्या। मार्क्स, एंगेल्स, डांगे, हुसैनी आदि मार्क्सवादी इतिहासकारों की व्याख्या से भिन्नता रखते हुए भी कोसाम्बी मूलतः मार्क्सवादी इतिहासकार थे। इतिहास के प्रति अपने दृष्टिकोण को प्रस्तुत करते हुए उन्होंने लिखा है कि हिस्ट्री इज द प्रेजेंटेशन इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ सक्सेसिव चेंजेस इन द मीन्स एंड रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन, अर्थात उत्पादन के संसाधनों एवं संबंधों में उत्तरोत्तर परिवर्तनों का तिथि क्रमानुसार प्रस्तुतिकरण ही इतिहास है। उनका मत है कि किसी प्रकार का व्यक्तिगत उपाख्यान एवं प्रशस्तियाँ मात्र एक भारतीय रेलवे टाइम टेबल अथवा स्वच्छंदतावादी उपन्यास की भांति नहीं है और न तो इतिहास की इस प्रकार की व्याख्या ही उचित है। इतिहास की व्याख्या के महत्व पर उनका मत है कि द मोर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज नॉट हु वॉज किंग और वेदर द गिवन रीजन हैड अ किंग, बट वेदर इज पीपल यूज्ड अ प्लग लाइट और हैबी एट द टाइम dynastic changes, however, may be studied in as so far they indicate powerful changes in the productive basis. अर्थात यह अधिक महत्वपूर्ण नहीं है कि कौन राजा था अथवा किसी क्षेत्र में कोई शासक था या नहीं, परंतु यह महत्वपूर्ण है कि किसी क्षेत्र में रहने वाले जनता द्वारा किसी भारी या हल्के हल का प्रयोग उस समय किया जाता था या नहीं। शासन परिवर्तनों का अध्ययन इस दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण है कि वे उत्पादन के आधारों में शक्तिशाली परिवर्तनों को कितनी गति प्रदान किए। इस प्रकार ऐतिहासिक व्याख्या के संबंध में डॉक्टर कौशाम्बी का मत है कि ऐतिहासिक अध्ययन की यह दृष्टि होनी चाहिए कि संस्कृति महत्वपूर्ण जनता के जीवन मार्ग का तत्व है, यह मात्र बौद्धिक और आध्यात्मिक मूल्यों की व्याख्या नहीं है। ऐतिहासिक काल निर्धारण। डॉक्टर कौशाम्बी ने स्टेज ऑफ इंडियन हिस्ट्री नामक शोध पत्र में भारतीय इतिहास का काल निर्धारण अनुलिखित प्रकार से प्रस्तुत किया है। एक नगरीय स्थिर सिंधु घाटी संस्कृति 3000 से 1500 बीसी, दो आर्यकरण अर्थात उत्तरकालीन कांस्य तथा प्रारंभिक लौहयुग कृषि पशु चारण संगठन की द्विजाति पद्धति का चार जातियों में विकास 800 बीसी, तीन गंगा घाटी के घने जंगलों को शुद्ध श्रम के माध्यम से साफ करना और आवास स्थापित करना मगध साम्राज्य के उद्भव तक 500 से 250 बीसी, चौथा आदिम प्रकार का सामंतवाद जिसमें संपूर्ण मध्य देश में कृषि तथा व्यापार का विकास और कृषि के साथ ही व्यक्तिगत समाप्ति का विकास 400 एडी के पूर्व, पांच उत्तरकालीन गुप्त युग में विशुद्ध सामंतवाद का प्रारंभ और मुस्लिम व्यापार तथा सेना का प्रवेश 1200 एडी के बाद, आधुनिक पूंजीवाद तथा नए स्वदेशी बुर्जुआ शासन का प्रारंभ। भारतीय इतिहास का यह काल विभाजन कौशाम्बी ने अपने मार्क्सवादी सिद्धांतों के परिप्रेक्ष्य में उत्पादन, उत्पादन के संसाधनों और संबंधों को दृष्टि में रखकर किया है। कृषि व्यापार दास सामंतवाद व्यक्तिगत संपत्ति और पूंजीवाद रखकर किया है। कृषि व्यापार दास सामंतवाद व्यक्तिगत संपत्ति और पूंजीवाद के क्रमशः विकास के आधार पर ही यह विभाजन और वैज्ञानिक माना गया है, परंतु किसी संस्कृति के विकास के अनेक सह आधार और प्रेरणाएं होती हैं जिसकी ओर डॉक्टर कौशाम्बी ने ध्यान नहीं दिया है। इतिहास पद्धति। डॉक्टर कौशाम्बी ने इतिहास के जिस प्रकार का पुनर्निर्माण का प्रयास किया वस्तुतः वह अत्यंत ही विकट है कि विर्चुअली नो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स वर्थ द नेम, अर्थात भारतीय इतिहास के लिखित सामग्री की लिखित सामग्रियां नहीं हैं। जो कुछ भी ऐतिहासिक विवरण विद्यमान है वे धार्मिक और कर्मकांडी विवरणों से इतना अधिक आवृत है कि उनसे इतिहास निकालने के प्रयास के लिए तत्कालीन भारतीय समाज के वास्तविक संरचना का पूर्व ज्ञान होना आवश्यक है। जब वे विवरण लिखे गए इसका परिणाम है कि वास्तविक इतिहास का ज्ञान नहीं प्राप्त कर पाते। उनका मत है कि वास्तविक ज्ञान मात्र पुरातत्व एवं नृतत्व विज्ञान से ही संभव है, जो भाषिक संरचना के आधार पर इतिहास अध्ययन की गुटियों से इतिहासकार को सुरक्षा प्रदान करती है। पुरातत्व से लिखित विवरणों की पुष्टि होती है जो हमें अतीत के जनता के संबंध में यह ज्ञान प्रदान करता है कि वस्तुतः उनका जीवन कैसा था, परंतु पुरातत्व के पूर्ण विकास के अभाव में उनका सुझाव है कि भारत में विद्यमान नेतृत्व के साक्ष्यों से इतिहास के वास्तविक प्रकार का ज्ञान हो सकता है। नेतृत्व विज्ञान पर कौशाम्बी ने अधिक बल दिया है जो तत्कालीन जातीय संरचना का साक्ष्य प्रस्तुत करता है, परंतु कौशाम्बी के पूर्व प्रोफेसर टैनबी ने 1933 में ही इसका उल्लेख किया है। कौशाम्बी ने अपने इस एक विशिष्ट प्रकार के इतिहास की रचना में नेतृत्व विज्ञान के साधनों के आधार पर पुरातत्व और लिखित विवरणों का समीकरण प्रविधि के द्वारा इतिहास के विशिष्ट प्रकार को प्रस्तुत किया है। अपने इस पद्धति के आधार पर उन्होंने अपनी उपर्युक्त दोनों पुस्तकों में इसी प्रविधि का प्रयोग किया है। डॉक्टर कोसाम्बी ने इस समन्वित पद्धति का विकास वैज्ञानिक आधार पर किया है, क्योंकि वे एक वैज्ञानिक थे, गणित और आनुवंशिकी के प्राध्यापक थे, इसलिए इतिहास के अध्ययन के लिए यह समन्वित पद्धति एक मौलिक देन है। डॉक्टर कोसाम्बी ने ऐतिहासिक अध्ययन की जिस पद्धति को स्वीकारा, उसमें माइक्रोलिथ, मेगाथी, पुरातत्व, नृतत्व विज्ञान के वस्तुगत साक्ष्यों के साथ ही मुद्राओं को भी वस्तुगत साक्ष्यों के रूप में स्वीकार किया। आहत मुद्राओं, पंच मार्क्ड क्वाइंस का उनका विशेष अध्ययन था। उन्होंने लगभग 1200 मुद्राओं का परीक्षण, विश्लेषण एवं व्याख्या किया है कि प्रत्येक मुद्रा में अपने समाज के हस्ताक्षर हैं, जो मगध और कौशल नरेशों से संबद्ध हैं। उन्होंने बौद्ध पाली साहित्य में उल्लिखित राजाओं की सूची तथा आहत मुद्राओं के चिन्हों के आधार पर दोनों के मध्य एक सह संबद्धता स्थापित किया है। मुद्राओं के अध्ययन में उन्होंने गणित के सांख्यिकी पद्धति का प्रयोग किया है। इस प्रकार कोसाम्बी ने मुद्राओं के अध्ययन के लिए एक नितांत नूतन एवं मौलिक दिशा दी है। भारतीय इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या। डॉक्टर कोसाम्बी ने सिंधु घाटी प्रागैतिहासिक सभ्यता के नगरीय विकास का प्रथम विकास का यह कारण माना है कि यह नदियों के घाटी में इसलिए विकसित हुई क्योंकि नदी से जल और मछली भोजन के स्रोत रूप में सुलभ था, इसलिए खाद्य उत्पादक अर्थव्यवस्था विकसित हुई। साथ ही साथ नगरों के अस्तित्व के लिए अतिरिक्त आवश्यकताओं की पूर्ति भी इससे होती थी। नदियों के किनारे की भूमि अधिक उपजाऊ थी और जंगलों को साफ कर उपयोगी बनाया जा सकता था। सिंधु घाटी में मात्र बड़े नगर इसलिए विकसित हो पाए क्योंकि वहां सिंचाई की सुविधा और भारी हल प्राप्त थे और अन्य स्थानों पर यह सुविधा नहीं थी। हड़प्पा सभ्यता के महान स्नानागार तथा मोहनजोदड़ो के विशाल पोखरों दोनों प्रजनन प्रक्रिया के प्रारंभिक प्रतीक थे। परंतु कोसाम्बी के इस व्याख्या से सभी सहमत नहीं। कोसाम्बी को यह मान्यता थी कि आंतरिक आर्थिक विवरण का नियंत्रण बड़े मंदिरों और पुरोहितों द्वारा किया जाता था। इस मान्यता का कोई निश्चित प्रमाण कोसाम्बी ने नहीं दिया है। मेसोपोटामिया के त्रिगुरत में प्रचलित पुरोहितों के आर्थिक नियंत्रण की अनुकरणात्मक व्याख्या प्रस्तुत कर दी गई है, क्योंकि सिंधु घाटी के सभ्यता में मंदिरों के स्पष्ट प्रमाण अप्राप्त हैं। डॉक्टर कोसाम्बी यह मानकर चलते हैं कि आर्य बाहर से आए, उन्होंने सिंधु सभ्यता के नगरों का विध्वंस किया। आर्य घुमक्कड़, पशुचारक, ग्रामीण अर्थव्यवस्था के थे, जो घोड़ों के रथों का प्रयोग युद्ध के लिए और बैलगाड़ी का प्रयोग भार ढोने के लिए करते थे। कालांतर में आर्यों ने लोहा और हल के प्रयोग में कुशलता प्राप्त कर ली। लोहे के प्रयोग के द्वारा जंगलों को साफ करते हुए वे पूरब की ओर बढ़े। अपने पहले के निवासियों से लौह प्रविधि में श्रेष्ठ होने के कारण ही वे उत्पादन और युद्ध में अग्रणी रहे। जातियों की उत्पत्ति के संबंध में सिस्टर और अगस्त्य की कुंभ से उत्पत्ति को अनार्य मानते हैं और उनका मत है कि आर्यों ने अनार्यों को अपने में मिलाने का यह जो कार्य किया वह उनका मौलिक आविष्कार रहा। परंतु आर्यों के एक विशिष्ट वर्ग ने धार्मिक और यज्ञ क्रियाओं पर एकाधिकार कर लिया, जिसे ब्राह्मण कहा गया, और वे उत्पादन के शक्तियों पर भी प्रभावी रहे। प्राचीन भारत में दासता के संबंध में कोसाम्बी का मत है कि भारत में दासता के विकास का निषेध शूद्र जाति के निर्माण की प्रक्रिया ने किया। भारत में दास एक गृह सेवक के रूप में थे, वे पशुओं की भांति खरीदे और बेचे नहीं जाते थे। प्राचीन भारत में वर्ग पद्धति का आधार क्षेत्रीय शूद्र व्यवस्था थी, दासता नहीं। उन्होंने सुलेकिन के शेवरी संबंधी अवधारणा का खंडन किया है कि सुलेकिन की अवधारणा यूरोप में प्रचलित दासता संबंधी विचारों के समान भारत की शूद्र व्यवस्था को देखा है। परंतु भारत में यूरोप के समान दासता नहीं थी, क्योंकि भारत में शूद्र व्यक्तिगत संपत्ति न होकर संपूर्ण समुदाय के सेवक थे। के रूप में मान्य थे, ये कालांतर में कृषि से संबद्ध हो गए। भारतीय जाति प्रथा ने उन्हें बृहद स्तर पर व्यक्तिगत दास होने से रोका। उत्तर वैदिक काल के जाति व्यवस्था के संबंध में कौशाम्बी का मत है कि ब्राह्मण का बढ़ते हुए कर्मकांडीय धर्म पर प्रभाव बढ़ता गया। इसी अवधि में आर्यों के समाज ने पशुचारण की स्थिति से उत्तम कृषि जीवन की ओर भारी हलों के प्रयोगों से बढ़े और धातु के प्रयोग से उनकी कुशलता में वृद्धि हुई। डॉक्टर कौशाम्बी भारत में लौह का प्रारंभ 800 से 700 बीसी मानते हैं, परंतु नए शोधों से अतरंजी खेड़ा के साक्ष्यों ने कौशाम्बी के इस मत को अमान्य कर दिया है। कृषि प्रधान समाज के विकास ने ट्राइबल समाज के सीमाओं को तोड़ दिया तथा नए धार्मिक बौद्ध एवं जैन के उपदेशों ने ट्राइब की सीमाओं को पार कर नए सिद्धांत और दर्शन को प्रतिपादित किया जो जाति पाति के बंधनों और कर्मकांडों की जटिलता को शिथिल कर दिया। साथ ही साथ इस धर्म को राजकीय संरक्षण भी प्राप्त हुआ। परिणामतः एक विस्तृत राज्य की आकांक्षा जागृत हुई। मगध साम्राज्य अपने समकालीन 16 महाजनपदों के लिए एक चुनौती बनकर खड़ा हुआ और उत्तर भारत के लिच्छवी, मल्ल, कोसल और मगध को अपने में विलीन कर लिया। मगध साम्राज्य के विकास के कारण की व्यवस्था में कौशाम्बी का मत है कि राजगिरी की भौगोलिक स्थिति, पर्वतों से घिरा हुआ प्राकृतिक दुर्गीकरण, लोहा और तांबा के भंडारों की सुलभता और इन धातुओं का उत्पादन में प्रयोग आदि प्रमुख कारण थे जिससे मगध साम्राज्य विकसित और विजयी हुआ। मौर्य साम्राज्य के विकास का कारण पंजाब के कबीलों की सिकंदर द्वारा समाप्ति तथा कौटिल्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सिद्धांत का मुद्रा अर्थव्यवस्था में परिवर्तन, उत्पादन की अधिकता और वेतनभोगी कर्मचारी व्यवस्था तथा पुलिस व्यवस्था आदि ने एक सुदृढ़ सामान्य के रूप में मौर्यों को प्रतिष्ठापित किया। यद्यपि अशोक एक उदार शासक था, परंतु उसने अपने प्रशासकीय सुधारों द्वारा नए प्रकार के नए पदों का सृजन कर धर्म महात्माओं के द्वारा अधिकारियों पर नियंत्रण का जाल बिछा दिया। इसी प्रकार कौशाम्बी ने कालांतर की सभ्यताओं का विश्लेषण भी उत्पादन प्रक्रिया के प्रविधि में परिवर्तन को स्वीकारा है जिससे सभ्यताओं का विकास होता गया। सामंती व्यवस्था के कालांतर में विकास का प्रारंभ कौशाम्बी ने भक्ति सिद्धांत को माना है जिसका प्रतिपादन गीता के माध्यम से हुआ। कौशाम्बी के अनुसार गीता की रचना तृतीय शताब्दी के पूर्व नहीं मानी जा सकती। यद्यपि श्री सुकथन कर महोदय गीता को द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व की रचना मानते हैं, परंतु कौशाम्बी महोदय ने इसके भक्ति के संबंधों के आधार पर दासता की कड़ी को जोड़ने का प्रयास किया है। कौशाम्बी से इस प्रश्न पर असहमति हो सकती है, परंतु उन्होंने भक्ति तथा अन्य धार्मिक समुदायों को सामाजिक पृष्ठभूमि की जो समाजशास्त्रीय वैज्ञानिक व्यवस्था की है वह भौतिक धरातल पर एक नया दृष्टिकोण अवश्य प्रस्तुत करती है। डॉक्टर कौशाम्बी ने भारतीय सभ्यता संस्कृति की जो भौतिकवादी व्याख्या की है वह मार्क्सवादी के बंधे बंधाए ढांचे में नहीं की है। अपनी मौलिक उद्भावनाओं के साथ वैज्ञानिक धरातल पर विशेषतः नृतत्व शास्त्र को आधार मानकर जो विचार प्रस्तुत किया है वह विचारणी, तर्कसंगत पर वस्तुनिष्ठ है, परंतु भारतीय इतिहास का काल विभाजन मात्र उपकरणों और उत्पादन के संसाधनों और प्रक्रिया पर ही निर्भर नहीं करता, क्योंकि संस्कृति की प्रक्रिया एक समन्वित प्रक्रिया है जिसमें राजनैतिक, धार्मिक, सामाजिक एवं आर्थिक क्रियाओं का भी योगदान है। इतिहास की आर्थिक व्याख्या मात्र एकाकी व्याख्या है। गौतम बुद्ध आर्थिक दृष्टि से संपन्न थे, शासन सत्ता के अधिकारी थे, परंतु भिक्षु बनने की प्रेरणा में आर्थिक नहीं दिखाई देता। अशोक एक सम्राट था, परंतु एक सम्राट ने अपने व्यक्तित्व का रूपांतरण भिक्षु रूप में कर लिया, इसके पीछे आर्थिक कारणों की व्याख्या नहीं की जा सकती। वैशाखी की सर्वश्रेष्ठ सुंदर आम्रपाली जब महाभिक्षु बुद्ध के सम्मुख उपस्थित हुई होगी तो दोनों के मन में उत्पन्न प्रतिक्रियाओं का कारण या अंकन क्या भौतिक और आर्थिक धरातल पर किया जा सकता है? इसी प्रकार संस्कृति के विकास की जो व्याख्या डॉक्टर कौसाम्बी ने की है वह अपने आप में पूर्ण नहीं है। गीता दर्शन में डॉक्टर कौसाम्बी ने जिस भौतिक दास और सामंत की दृष्टि प्रस्तुत की है वह अपने भौतिक व्याख्या की पुष्टि के लिए एक सरणी को जोड़ने का प्रयास मात्र है। क्योंकि उन्होंने ब्राह्मण वर्ग के प्रभाव के अंतर्गत भक्ति को संबद्ध करते हुए एक वर्ग विशेष के एकाधिकार और उनके द्वारा दासों पर प्रभुत्व प्रदर्शित किया है, गीता के कर्मवाद की ऐतिहासिक व्याख्या को प्रस्तुत करने में उपेक्षा की है अथवा उसको भौतिक धरातल प्रदान न कर सके। भारतीय इतिहास लेखन में कौसाम्बी का योगदान मौलिक और वैज्ञानिक है, क्योंकि उन्होंने प्रागैतिहासिक काल से लेकर आधुनिक पूंजीवाद के काल तक जो नई इतिहास लेखन की दिशा दी है वह प्रागैतिहासिक उपकरणों, नृतत्व साक्ष्यों, पुरातात्विक प्रमाणों, मुद्रा और अभिलेखों से पुष्ट करते हुए लिखित साक्ष्यों को एक नया आदान प्रदान किया है। परंतु कौसाम्बी ने अपनी इस इतिहास लेखन में कहीं भी पक्षपात नहीं किया है और न तो कहीं वे प्रतिबद्ध रहे हैं।